ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीनिष्ठती निम्नगानायता गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणामिदमस्तथा। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजे साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रसशोणशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित इस सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, आज परम पावन पवन परम पवित्र दिन है। क्या है? महाशिवरात्रि। रात्रि तो बहुत होती है, परंतु आज महाशिवरात्रि है। आज की रात शिव जी के नाम। शिव जी का आज परम पवित्र दिन है। जिसे हम सब लोगों ने यह श्लोक उच्चारण किया, निम्न गाना यथा गंगा। इस संसार में नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कोई है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गंगा। बहुत बहुत नदियां, गोदावरी, कावेरी, यमुना, सरस्वती, बहुत बहुत नदियां हैं, परंतु सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी यदि कोई है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गंगा नदी। क्योंकि गंगा नदी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हजारों हजारों लोगों को पवित्र करके चलती है, न केवल पृथ्वी को, ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाली ये गंगा नदी है। और सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ देव यदि कोई है तो वो है भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण। सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र यदि कोई है तो वह है ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। और उसी के साथ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सभी वैष्णवों में, भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में, वैष्णवों में शिरमोर यदि कोई है तो कहते हैं वैष्णवानाम यथाशंभु। शिवजी भोलेनाथ वैष्णवों में अग्रगण्य, सबसे मुख्य है। वैष्णव का लिस्ट जब निकलता है तब सबसे पहले शिवजी का नाम आता है। भगवान के बहुत बड़े परम भक्त हैं। और ऐसे शिवजी के बारे में कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, साधारण संसार में लोग सोचते हैं कि शिव जी बहुत तमोगुणी है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शिव जी के प्रणाम मंत्र में कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, जैसे हे कृष्ण करुणा सिंधु, जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए करुणा सिंधु कहा जाता है, वैसे भी शिव जी के लिए भी करुण शब्द उपयोग किया गया है। शिव जी तमोगुण में नहीं है, तमोगुण के देवता नहीं है, परंतु भगवान की इच्छा को देखकर इस संसार का जब प्रलय करना होता है तब शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। शिव जी को कभी क्रोध आ ही नहीं सकता है, परंतु जब संसार का प्रलय करना होता है तब वे क्रोध को स्वीकार करते हैं। देखिए बहुत बुद्धि की बात है, क्रोध आ जाना और क्रोध को स्वीकार करना, ये जमीन और आसमान का अंतर है। संसार में हम कुछ कार्य करते हैं और हमारे मन के विपरीत यदि कोई कार्य हो जाए तो हम क्रोधित हो जाते हैं, और ऐसे क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे क्रोधित हो जाते हैं कि उस क्रोधावस्था में हम क्या बोल रहे हैं यह भी हम नहीं जान सकते। इसका अर्थ है कि वह क्रोध हमें आवृत कर लिया है, हमारे ऊपर क्रोध का शासन लग जाता है, हम क्रोध के अंडर में आ जाते हैं। परंतु शिव जी क्रोध के अंडर में नहीं है, शिव जी क्रोध को अपने अंडर में रखते हैं। जैसे जेब में 10 रुपये हो तो जब चाहे आप निकाल सकते हो और अंदर रख सकते हो, वैसे शिव जी जब इच्छा होती है शिव जी तब क्रोध को निकालते हैं, और जब वह कार्य संपन्न हो जाता है तब वह क्रोध को मिटा देते हैं। क्रोध शिव जी के अंडर में है। अब कुछ देर के लिए एक जगह पर ठीक से बैठिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए कुछ भक्तों की इच्छा है कि शिव जी के बारे में कहिए, और कुछ लोगों की इच्छा है कि भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कहिए। लेकिन ये दोनों इच्छा बराबर है, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य देव श्री रामचंद्र जी हैं। तो हम प्रयास करेंगे दोनों की कथा कहने के लिए। शिव जी, आप सब जानते हो शिव जी का जन्म कैसे हुआ। जब भगवान कारणोदकशायी विष्णु से, भगवान के अनंत कोटि रोम रोम से यह ब्रह्मांड निकले, उस ब्रह्मांडों में एक विष्णु आए, उसका नाम हुआ गर्भोदकशायी विष्णु। गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी जन्म लिए। ब्रह्मा जी जन्म लेकर 100 साल तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सभी वेद और शास्त्र का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने डायरेक्ट हृदय में ज्ञान स्थापित किया और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले वे अपने मन से 4 कुमार को जन्म दिए, जिसे सनत कुमार कहा जाता है। और 4 कुमारों को जन्म देकर कहा कि आप विवाह करो और विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र जो थे, वे ब्रह्मा जी की अपने पिता की आज्ञा को नहीं माने कि पिताजी आप जो कुछ भी बोलो हम करने के लिए तैयार है, परंतु विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि वे जानते थे विवाह करके क्या हालत होती है। तो सनत कुमारों ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कैसे पुत्र हो, ये बाप बोल रहा है कि तुम विवाह करो तो विवाह नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उस क्रोधावस्था में ब्रह्मा जी की भृकुटी से एक रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह रोता हुआ उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम रुद्र रखा गया है। और वो बालक और कोई नहीं, वे भोलेनाथ भगवान शंकर ही थे। शिव जी का जन्म इस प्रकार से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से हुआ और ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा कि पुत्र ये सनत कुमार तुम्हारे चार भाइयों ने तो मेरी बात नहीं मानी, परंतु हे भोलेनाथ, हे रुद्र, हे शिव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम सृष्टि की प्रजा की उत्पत्ति करो। शिव जी ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। शिव जी तो वहां से निकले और निकले और इस पृथ्वी पे आकर सृष्टि तो करना प्रारंभ किए, परंतु कैसी, भूतों की सृष्टि करने लगे, प्रेतों की सृष्टि करने लगे, सांप की, बिच्छू की इत्यादि विचित्र सृष्टि करने लगे। और उससे कई रुद्रगण भी प्रकट हुए और कुछ दिनों के बाद शिवजी ने जिन जिन को उत्पन्न किया था वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी का ही गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने अर्जेंट शिव जी को बुलाया कि यहां पर आओ, आप सृष्टि उत्पन्न करना पहले बंद करो। मैंने जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा मैं वापस खींच लेता हूं। भाई आप ऐसा कार्य मत करो, मैंने प्रजा की, एक मनुष्य की सृष्टि करने के लिए कहा था और आप, अब जो जिसको प्रिय है उसी को उत्पन्न करेगा। शिव जी को तो यही प्रिय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव, आप सृष्टि मत करो, परंतु आप एक काम करो, जब जब इस संसार का प्रलय करना होता है तो प्रलय का डिपार्टमेंट मैं आपको सौंपता हूं। तो शिव जी को प्रलय करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार से शिव जी की बहुत बहुत कथा है, शिव जी का बहुत बड़ा चरित्र है। हम कहां से शुरू करें, कहां पर अंत करें, परंतु इतना ही सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी का चरित्र प्रारंभ यहां से करते हैं कि एक समय की बात है, भोलेनाथ शिव जी कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए गए थे और अकेले नहीं, संग सती, अपनी भारिया सती को लेकर गए थे। शिव जी कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाते थे। शिव जी कभी भी बाहर जाते कहीं कथा सुनने के लिए प्रवचनों में, तो अपनी पत्नी सती को साथ में लेकर जाते थे। तो शिव जी अपने आचरण से जगत को उपदेश दे रहे हैं कि भाई आपको भी जब मंदिर में जाना हो, प्रवचनों में जाना हो, तो अकेले नहीं जाना चाहिए, अपनी पत्नियों को साथ में लेकर जाना चाहिए। और यहां पर बहुत गड़बड़ हो गई है, 80-90% प्रभु जी लोग हैं और केवल 10% माता जी है। परंतु आपसे ध्यान रखना चाहिए, शिव जी सिखा रहे हैं कि जब कहीं भी जा रहे हो तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाओ। तो संग सती जग जननी भवानी, भवानी सती को साथ में लेकर शिव जी कुंभज ऋषि के पास अक्सर राम कथा सुनने के लिए जाते थे। और भी बहुत बड़ी कथा है कि कुंभज ऋषि शिव जी को राम कथा सुनाए, शिव जी कुंभज ऋषि को सुनाए, परंतु गड़बड़ यहां पर हो गई कि शिव जी के साथ जो पत्नी सती थी वे भगवान की कथा ठीक से सुन नहीं सकी, क्योंकि कथा में नींद आ गई। ये नई बात नहीं है, तो अक्सर होता रहता है, कई लोगों को आने लगी है। ये सत्य है, कथा में नींद कई लोगों को आती है। क्यों? क्योंकि कथा में बहुत शांति मिलती है। इस संसार में सभी जगहों पर जाएंगे, दुख दर्द और यह काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य यह अभद्र के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, परंतु यदि कोई भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाता है तो उसे बहुत शांति मिलती है। इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है कि नींद आ जाती है। सत्य बात है, संसार में लोगों को सोने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, परंतु हम कहते हैं गोली मत लो, हमारे प्रवचन में आ जाओ, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। क्योंकि नींद तब आती है जब प्रवचन सुनने में आनंद न आ रहा हो, कुछ समझ में न आ रहा हो, और या तो बहुत कुछ समझ में आ रहा हो। तो जब प्रवचन में कुछ समझ में नहीं आता है तो भक्त लोग प्रवचन सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे इस्कॉन में एक प्रभु जी है जिसका नाम है सार्वभौम प्रभु। वे कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा सभी भक्तों को भगाया जा सकता है। तो पूछा कौन सा मंत्र है, तो सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही बोलेंगे सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन एक ऐसा भी मंत्र रखता हूं जो बोलने से सब लोग आ जाते हैं। तो पूछा कौन सा मंत्र, तो कहते महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णव। ये बोलते ही सब लोग आ जाते हैं। तो ऐसा श्रोता नहीं बनना चाहिए हमें, श्रोता बनना है, सोता नहीं बनना है। देखिए सती जी अपने पति देव शिव जी के साथ कथा सुनने के लिए गई हैं, परंतु कथा सुनते सुनते सो गई, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र के बारे में ठीक से नहीं जान सकी। और इसीलिए जब शिव जी और सती दोनों वापस लौट रहे थे कथा सुनकर, तो बीच में भगवान श्री रामचंद्र इस युग में जन्म ले लिए थे और कैकेयी ने दो वर मांग लिए थे, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री रामचंद्र वन में भटक रहे थे, रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया था और भगवान हा सीते करके सीता जी को ढूंढ रहे थे। उतने में ये शिव जी और उनकी भार्या सती ये वापस लौट रहे थे, तो देखा कि ये लड़का क्यों रो रहा है। शिव जी तो जान गए कि ये भगवान हमारे आराध्य भगवान प्रभु जी रामचंद्र है, परंतु सती जी नहीं जान सकी। और सती ने भगवान की परीक्षा ली, जो प्रभु इस संसार के सभी जीवों की परीक्षा लेते हैं, सती उस भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने गई परंतु फेल हो गई। और इसीलिए आगे चलकर सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। ये बहुत बड़ी कथा है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं बुलाया गया शिव जी को, सती जी को बहुत बुरा लगा। पिताजी के घर पे जाकर देखा तो दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली दे रहे थे। सती अपने शरीर से ही अग्नि प्रकट करके वहां पर जलकर भस्म हो गई। शिव जी की भार्या सती हो गई। शिव जी की कथा है। तब तुरंत उस सती ने अपना दूसरा जन्म हिमालय के वहां पर लिया, हिमालय की पुत्री बनी और उसकी माता का नाम मैना हुआ। हिमालय और मैना के गर्भ से वही सती पार्वती के रूप में दूसरा जन्म ग्रहण की। और शिव जी तो सनातन है, शिव जी का एक नाम है सदाशिव। शिव जी कभी मरते नहीं है, वे सदा के लिए रहते हैं, सदाशिव। तो शिव जी तो एक ही थे, परंतु पार्वती बदलती रहती है। ये भी एक कथा है। शिव जी के गले में जो मुंड माला है, ये जितने भी मुंड है मनुष्यों की, ये सभी मुंड अपनी पत्नी की है, पार्वती की, क्योंकि बिचारी पत्नी मरती रहती है और शिव तो सदा के लिए रहते हैं। तो सती वास्तविक सती बन गई और उसका दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के वहां पर हुआ। लेकिन अगले जन्म की पूरी स्मृति थी कि मेरे पति शिव जी थे और इस जन्म में भी उसका दृढ़ निश्चय था कि विवाह तो शिव जी के साथ करूंगी। क्योंकि नारद मुनि एक बार आए थे सती जी के पार्वती के पास और पार्वती को कहे कि तुम्हारे लिए योग्य वर यदि कोई है तो वो शिव जी है। नारद मुनि बहुत कान भरे थे और पार्वती ने निश्चय कर लिया। पार्वती उम्र लायक हो गई 16-20 साल की और निश्चय कर लिया कि मैं विवाह शिव जी के साथ करूंगी। पार्वती को बहुत मनाया उनके पिता हिमालय ने, माता मैना ने, कि शिव जी के साथ विवाह करोगे और किसी भी वर का नाम लो, हम आपके साथ विवाह करा देंगे, लेकिन शिव जी के साथ न तो रहने का कोई ढंग है, न तो कपड़े पहनने का कोई ढंग है, अपने लिए एक घर भी नहीं बनाया है। देखते ना, किसी लड़की का, हमारी बहन का जब ढूंढते हैं कोई वर, तो देखते हैं घर का प्लेट है, कि भाड़े पर रहता है। ये तो भाड़े पर भी नहीं रहते थे, एक फ्लैट ही नहीं, एक पेड़ के वट वृक्ष के नीचे रहते हैं शिव जी। शिव जी का जीवन बहुत सादा है। शिव जी अपने जीवन से बताते हैं, यद्यपि शिव जी के पास कोई कमी नहीं है। अरे जो रावण को सोने की लंका दे सकता है, दूसरों को दान में सोने की लंका दे सकता है, तो वे अपने लिए क्यों सोने का मल, अपने लिए तो हीरे जवाहरात का मल बना सकता है। मान लीजिए इस संसार में कोई किसी को 10 रुपया देता है तो समझना चाहिए उसके पास 100 रुपया तो होगा, क्योंकि तब जाकर 10 रुपया देता है। तो रावण को सोने की लंका देने वाला क्या अपने पास समर्थता नहीं है कि घर बना ले? परंतु शिव जी उपदेश दे रहे हैं जगत को कि जीवन सादा होना चाहिए और विचार उच्च होने चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार होगा तब ही भजन कर सकते हैं, नहीं तो भजन नहीं होगा, नहीं तो फंस जाएंगे इस झमेले में। तो बहुत बहुत मनाया लेकिन नहीं माने। शिव जी को पता चला कि आपकी अगले जन्म की पत्नी सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई है और आपसे विवाह करना चाहती है। तो शिव जी ने परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि को भेजा। ये सप्तऋषि जानते हो आप कौन है? आप ऊपर सिर कर लो, तो आकाश बादल है। आज भी आकाश में ये सप्तऋषि के तारे देखने मिलते हैं। सात ऋषि हैं। शिव जी ने ये सात ऋषियों को भेजा के जाओ उसकी परीक्षा लेकर आओ कि वास्तव में वो मुझसे विवाह करना चाहती है। सप्तऋषि गए हैं सती के पास और सती के पास जाकर शिव जी के लिए बहुत भले बुरे वचन बोले कि तुम शिव जी के साथ क्यों विवाह करना चाहती? जो पूरा दिन भजन करता है, शमशान में बैठता है, उसके साथ विवाह करोगी? तुम शिव जी के साथ विवाह मत करो। सप्तऋषि ने पार्वती को बहुत मनाया, बहुत मनाया, परंतु पार्वती नहीं मानी। अंत में पार्वती ने सप्तऋषियों को कह दिया कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, हे सप्तऋषि गणों, एक नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म भी बीत जाए फिर भी विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ। कोटि जन्म रही रगर हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। मैं कुंवारी रह जाऊंगी परंतु विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उसे यही विचार रखना चाहिए कि विवाह करना है भक्त के साथ। तो इस प्रकार से परीक्षा में पास हुई। सप्तऋषियों ने शिव जी को कहा कि पार्वती योग्य है आपकी पति पत्नी बनने के लिए। और पार्वती यहां पर बहुत कह रही थी मुझे शिव जी के साथ ही विवाह करना है। तो एक दिन की बात, सभी देवतागण ये देखे कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी गए हिमालय के पास और जाकर हिमालय को मनाए कि आप अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ कर दो। हिमालय ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो इसलिए हम कर देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम से उनके मुख से हम प्रारंभ करते हैं अब आगे की कथा। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। हिमालय, पार्वती के पिता ने जब देखा कि शिव जी के साथ विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो हिमालय ने सोचा कि ठीक है अब विवाह करवा ही देते हैं। तो कहते हैं सुतीनु सुनखतु सुधरी सोचाई। पार्वती जी के माता और पिता ने अच्छा दिन देखा, शुभ दिन देखा और शुभ नक्षत्र देखकर एक लगन पत्रिका तैयार करवाई गई। बेगी बेद विधि लगन धराई, इसे लग्न, जिसे लड़की वाले जो होते हैं वे लग्न पत्रिका बनाते हैं ब्राह्मण को बुलाकर। पत्री सप्तऋषि ही सोदी दिन ही, और पार्वती के माता पिता ने सप्तऋषियों को बुलाया। ये विवाह करने वाले बीच में सप्तऋषि थे। सप्तऋषियों को बुलाया और उसे पत्री दी और कहा कि जाओ ये शिव जी के पिता ब्रह्मा जी को दे देना। तो ये सप्तऋषि ये पत्रिका लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि लड़की की और लड़की के माता पिता प्रसन्न है। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा कि अब पार्वती के माता पिता ने लग्न पत्रिका भेजी है तो बेटा तैयार हो जाओ विवाह करने के लिए। शिव जी ने कहा जैसे पिताजी आपकी आज्ञा, यदि आपकी आज्ञा ही है कि मैं विवाह करूं तो ठीक है। तो योग्य मुहूर्त देखा, विवाह का दिन आया और विवाह के दिन अब शिव जी को तो इतना उत्साह नहीं था विवाह में, यद्यपि देवताओं की इच्छा थी कि शिव जी विवाह करें, परंतु विवाह का दिन आया तो देवता कोई दिख ही नहीं रहा था। अब जब दूल्हे का विवाह होता है तो चार पांच लोग तो आगे पीछे घूमने चाहिए। वास्तव में मनुष्य के जीवन में, पुरुष के जीवन में एक ही दिन अच्छा आता है और वो है विवाह का दिन। उस दिन तो दूल्हे राजा होता है। वैसे भले ना कोई चाय का भी न पूछता हो, परंतु विवाह के दिन तो भाई भाई करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, क्या चाहिए, क्या लाऊं आपके लिए, पानी मांगते तो दूध लेकर आते हैं। एक दिन ही, परंतु एक दिन ही ऐसा होता है। वे दिन निकल जाने के बाद तो शेर चूहा बन जाता है। एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक बहुत बड़ा घोर जंगल था। उस घोर जंगल में जंगल का राजा था एक सिंह, और ये सिंह जो था, ये जंगल के जितने भी सिंह थे वो सभी सिंहों का राजा था, और इस सिंह की दहाड़ से जंगल के सभी लोग कांप जाते थे। और उस सिंह का एक दिन विवाह था, और जब उस जंगल के राजा सिंह का विवाह था तो उस विवाह में, उसकी बारात में सब लोग जुटे, जंगल के हाथी जुटे, खरगोश जुटे, हिरण जुटे, सियार जुटे, सब लोग उस सिंह के विवाह में जुटे हैं। और बहुत बड़ी बारात जा रही थी, और जा रही थी उतने में उस बारात में से एक खरगोश था। एक खरगोश ने देखा कि एक चूहा किसी बिल में छिप कर बैठा है, बारात में भाग नहीं लिया है। तो चूहा बारात से निकलकर, उस खरगोश उस बारात से निकलकर उस चूहे के पास गया और जाकर कहा कि तुम विवाह में क्यों, बारात में क्यों भाग नहीं लिए हो। तो चूहे ने कहा छोड़ना इसे, ये बारात में क्या भाग लेना। खरगोश ने कहा कि बारात में क्यों भाग नहीं लिए हो, जंगल के राजा सिंह का विवाह है, तुम्हें तो भाग लेना चाहिए। चूहे ने कहा उसमें क्या है, तुम जंगल के राजा की बात करते हो, ये मेरा ही भाई है, मेरे भाई का ही विवाह होने जा रहा है, मेरा सगा भाई है। तो खरगोश ने कहा सिंह का विवाह है, राजा का विवाह है और तुम नहीं जा रहे हो। चूहे ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन मैं भी इस जंगल का राजा सिंह था, लेकिन विवाह करके आज मैं चूहा बन गया। विवाह के पहले मैं भी सिंह था, लेकिन विवाह के बाद ये हालत हो गई है। ऐसी हालत होती है, विवाह के पहले सिंह जैसे मजबूत होते हैं, परंतु विवाह के बाद मजबूर हो जाते हैं। वो समय तुलसीदास जी तो कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नारी। नारी के विवश नर बंदर की तरह, जैसे मदारी डुमरू डमरू बजाकर बंदर को नचाता है, ऐसे बेचारा पुरुष अपने नारी के वश में होकर नाचते रहता है। तुम्हें क्या कर रहा था। हाँ, शिव जी का विवाह, शिव जी को पता चला विवाह करना है, तो शिव जी का विवाह था। परंतु कोई शिव जी के साथ, हमारे गुजराती में अणवर कहते हैं, आप में क्या कहते हैं, दूल्हे के साथ जो रहते हैं, दो तीन जन आगे पीछे घूमते हैं, शिव जी के साथ कोई नहीं थे। उसका मेकअप करने वाले, जूते पहनाने वाले कोई नहीं मिले। जब शिव जी को साथ कोई देवता नहीं आए, तब शिव जी के गणों ने सोचा कि अब देवता लोग नहीं आ रहे तो चलो हम ही शिव जी के साथ रहते हैं। तो शिव जी के सभी भूत प्रेत बेताल रुद्रगण ये सब शिव जी के पास आए और कहने लगे, देवता नहीं आए तो कौन बड़ी बात हुई, हम तो आपके साथ हैं, बैठो शिव जी, हम आपका मेकअप करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी का मेकअप किस प्रकार से करने लगे। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा। अब शिव जी का श्रृंगार कौन कर रहे हैं, शिव जी के गण। कैसा श्रृंगार, तो जटा मुकुट, दो तीन जनों ने कहा साइड में रहो, बाजू में हो जाओ, शिव जी को मैं मुकुट पहनाऊंगा। अब मुकुट तो ये लोग क्या मुकुट जाने, शिव जी की जो जटा थी उस जटा को ही गोल 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 घुमाकर लंबी करके मुकुट जैसा बना दिया। जटा मुकुट, शिव जी की जटा को ही लंबा लंबा मुकुट बना दिया। और अही मेरु संवार, किसी ने कहा अब इस मुकुट के ऊपर पीच होना चाहिए। दोनों ने कहा अरे चुप रहो, उस पीच से भी अच्छी चीज हमारे पास है। एक सांप को लेकर आया और सांप को बीच में रख दिया। अब शिव जी के गण है, इसी प्रकार श्रृंगार होगा। सांप को बिल्कुल मोर बीच की जगह पर रख दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, किसी ने कहा कान में, और कान में कुछ होना चाहिए। तो दो तीन गए और सर्पों का ढेर था, उसमें से दो तीन सर्पों के जो बच्चे थे छोटे छोटे, सर्प के बच्चों को लाकर यहां पर चिपका दिया। सिर पर एक सांप, कान में दो सांप। अब देखेंगे ये जब जाएंगे अपनी पत्नी के वहां तो क्या हालत होगी सब लोगों की। तन विभूति और कुंडल कंगन और हाथ में भी दो सांप पहना दिए, यहां बाजूबंद और यहां यहां और यहां। कुछ ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई ये देवता लोग के, देवताओं के लोक में और मनुष्य लोक में जब विवाह होता है तो गले में बहुत जाड़ जाड़ हार पहनते हैं, नहीं देखा है तुमने? दो तीन ने कहा हाँ देखा तो है, तो फिर प्रभु को लगाओ कुछ। तो दो तीन जन गए और बड़े बड़े जाड़े जाड़े सर्प को लेकर, अब सर्प के सिवा कुछ था ही नहीं वहां पर। और ये लोग को सर्प भी अच्छे लगते थे, सोना यदि होता भी तब जो व्यक्ति जैसा होता है वही अच्छा लगता है। तो दो तीन जाड़े जाड़े सर्प गले में लगा दिए, आप गिनत रहे कितने सर्प लगा दिए। तन विभूति पटक केहरी छाला, किसी ने कहा अब ये जो कपड़े शिव जी ने पहने हैं ये निकालो, ये बहुत मेले हो गए। शिव जी को लगा कि राजा का ड्रेस लेकर आएंगे, लेकिन दो तीन गण गए और जाकर ताजा सिंह की जो छाल होती है, शेर की जो खाल होती है, वे लेकर आए और शिव जी को पहना दिए। ठीक है, शिव जी ने कहा जो भी है। शिव जी तो बहुत सादे थे, भोले थे बेचारे। शशि ललाट, शिव जी के जटा में मुकुट में चंद्रमा है, बहुत ही सुंदर उसकी आभा है। ये चंद्रमा जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान विष्णु ने दिया था, क्योंकि समुद्र मंथन से सबसे पहले, सबसे पहला रत्न विष निकला, हलाहल जहर जब समुद्र से निकला तो सब लोग डर गए, सभी देवता और असुर सब लोग कांप गए कि अब क्या किया जाए। सब लोग भागकर सदाशिव के पास गए और कहा कि प्रभु कुछ करो। तब शिव जी ने वह हलाहल जहर, कहा जाता है रा बोलकर शिव जी ने वह जहर मुंह में डाला और म बोलकर मुंह को बंद कर लिया, और राम नाम के प्रभाव के कारण वह हलाहल जहर अमृत का काम किया। गरल सुधा, यदि भगवान का नाम, भगवान का भजन करते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है, और यदि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो अमृत भी विष बन जाता है। उसी प्रसंग में आगे जब मोहिनी सबको अमृत बांट रही थी तो देवताओं को अमृत बांट रही थी, परंतु देवताओं की पंक्ति में राहु और केतु भी आकर बैठ गए। भगवान को पता चला कि राहु केतु अमृत पीने बैठे हैं, भगवान ने चक्र से उसका सिर काट दिया। तो उस वक्त भगवान ने शिव जी को जो चंद्रमा दिया था, और आज भी आप देखोगे, आज भी लोगों का विवाह होता है तो दूल्हे राजा के सिर के ऊपर पगड़ी डालते हैं और पगड़ी के ऊपर लाल लाइट रखते हैं, और लाल लाइट का वायरिंग पूरा अपनी जेब में रखते हैं, और जेब से पूरा वो सर्विस करते हैं, शुरू बन होता है। अब ये प्रथा कहां से, शिव जी से ही ये प्रथा चली है। शिव जी के सिर पर चंद्रमा था तो संसार के लोगों के ऊपर चंद्रमा की तो बात छोड़ दीजिए। अब शिव जी ने चंद्रमा रखा तो हमें भी कुछ तो रखना चाहिए, इसलिए लाइट रख देते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी के सिर पर चंद्रमा, नर सिर माला, किसी ने कहा कि गले में कुछ माला पहनाइए, तो ये तो शिव जी की जो नित्य माला थी, मुंड माला, नर के सिरों की खोपड़ी की माला, थोड़ी साफ सफाई करके धोकर पहना दिए शिव जी को। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, और सब लोग अनुमोदन कर रहे थे। अरे अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे पहनाओ पहनाओ, कुछ लोग कहते पहनाओ कैसा लग रहा है, अरे बहुत अच्छा पहनाओ। इस प्रकार से चल रहा था। असीव वेश शिव धाम कृपाला, गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये सर्प और बिच्छू के ये सब श्रृंगार किए गए, लेकिन शिव जी बहुत सुंदर लग रहे थे। कर त्रिशूल, हाथ में शिव जी के हाथ में त्रिशूल था और उर डमरू, उस त्रिशूल के ऊपर डमरू था। चले बसह चली बाज ही बाजा, और किसने कहा गाड़ी लेकर आओ, कौन सी गाड़ी लाए, मर्सिडीज लाए, मारुति लाए, एस्टीम लाए, कौन सी लाए, तो किसने कहा ये सब मत लाओ, ये सब कचरा है, वो बैल ही लेकर आओ, नंदी को लेकर आओ, उसके ऊपर ही हमारे प्रभु अच्छे लगते हैं। संसार में पहला ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह बैल के ऊपर बैठकर होने जा रहा है। इस प्रकार से शिव जी का श्रृंगार किया, उसे बैल के ऊपर बिठाया। कुछ लोगों ने कहा अरे पाउडर लगाना तो बाकी रह गया, क्या आप भी पाउडर नहीं लगाए, पाउडर लेके आओ, पाउडर लेके आओ। कौन सा लेकर आए, पॉन्ड्स का लाए, कौन सा लाए। दो दो रुद्रगण दौड़कर गए शमशान में, और शमशान में ताजी राख थी भस्म, ताजी राख को लेकर आए। पाउडर क्या लगाएंगे, ये ताजी राख लेकर आए। तो शिव जी के शरीर में ताजी भस्म लगा दिए और दूल्हे राजा को तैयार किए हैं। शिव जी बैठे हैं नंदी बैल के ऊपर और सारे रुद्रगण पीछे पीछे नहीं आगे बिल्कुल नाच रहे थे। आज मेरे यार की शादी है, बहुत ही सुंदर दृश्य था। और नाचने में भी कैसा नाच था, कोई वहां नाच रहा है, कोई वहां नाच रहा है, कोई अपनी मुंडी को हाथ में लेकर उछाल रहा है। इस प्रकार से सब लोग अपनी अपनी धुन की में नाच रहे हैं, बहुत उदंड नृत्य नृत्य हो रहा है। जब शिव जी इस प्रकार से नाचने लगे, इस प्रकार से बारात जाने लगी और कैलाश पर्वत से वो बारात निकली है, वो बारात धीरे धीरे पार्वती के घर पर उस गांव में पहुंचने लगी, तो रास्ते में ही सभी देवतागण हो गए, क्योंकि शिव जी की बारात में सबको जाना है। भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए और 33 करोड़ देवी देवता सब लोग शिव जी की बारात में जुटे। तो आगे आगे जितने भी रुद्रगण थे वे नाच रहे थे, और उसके पीछे सभी देवतागण, विष्णु ब्रह्मा जी सभी देवता थे और पीछे शिव जी थे। तो इस प्रकार से सब लोग जा रहे थे, तो जाते जाते भगवान विष्णु के मन में एक बात आई कि इस प्रकार से यदि आगे ये सब लोग नाचते रहे, और अभी गांव बहुत नजदीक आ रहा है और गांव के लोग देखकर ही डर जाएंगे, सबसे पहले ये लोग के नाच को देखकर डर जाएंगे, कहां से आया है ये, बाराती है कि यमराज के दूत है। भगवान विष्णु को लगा कि यदि इस प्रकार से नाचते रहे तो ये लोग गांव में भी एंट्री भी नहीं करने देंगे, इसलिए काम करो। भगवान विष्णु ने एक सुझाव दिया कि ये जो शिव जी के गण जो नाच रहे हैं उसको पीछे करो और देवताओं को आगे रखो, ताकि कुछ देर के लिए तो शांति मिले। तो ब्रह्मा जी गए और कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी नहीं गए, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान विष्णु ने यह सुझाव शिव जी को दिया कि भोलेनाथ ये आपके जो है रुद्रगण, इसे आप पीछे बुला लो और देवताओं को आगे रखो। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं। शिव जी ने अपने दो रुद्रगणों को बुलाया और कहा कि जाओ, जितने भी हमारे आगे नाच रहे हैं उसे पीछे करो। तो रुद्रगण दूर से सीटी बजाए, सीटी बजाकर बुलाए, नाचना तो है, नाचना बंद नहीं करना है, परंतु अब पीछे नाचना है, बालकनी में, ये स्टॉल में नहीं नाचना है, बालकनी में नाचेंगे हम। तो सभी गणों ने अब नाचते नाचते सब लोग पीछे चले गए और देवता लोग आगे हो गए, और सभी देवताओं में आगे भगवान विष्णु रहे। और देवता लोग तो बहुत सुंदर सुंदर मेकअप करके आए थे, और देवताओं की पत्नियां भी बहुत जितना हो सके उतना श्रृंगार करके आई थी, बहुत सज धज। इस संसार का साधारण व्यक्ति के घर पे जब विवाह होता है तो कितना मेकअप करके और गहना पहन कर जाते हैं, मनुष्य से करोड़ों करोड़ों गुना सुखी और धनी देवता लोग हैं। ये जब शिवजी के विवाह में गए होंगे तो कितना अलंकार पहन कर गए होंगे। भले शिवजी सादे थे परंतु ये देवी देवता तो बहुत मजबूत थे, ये तो बहुत सुंदर श्रृंगार करके और देविया जो थी वो गाना भी गा रही थी। तो ये देवताओं का डिपार्टमेंट अलग ही दिख रहा था और पीछे शिवजी का डिपार्टमेंट भी अलग ही दिख रहा था। ये तो धमाधार पीछे से नाच कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये चलते चलते ये बारात पार्वती जी के हिमालय और मैना के गांव में पहुंची। गांव में पहुंची धीरे धीरे ये बारात ये हाँ अब गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि शिव जी के गण कैसे नाच रहे थे। तो शिवजी ने अब शिवजी तो देख रहे थे बहुत आगे नाच रहे, जब ये शिवजी के गण पीछे आए तब शिवजी ने देखा कि ये सब लोग कैसे नाच रहे हैं। तो शिवजी देख रहे हैं, शिव अनुशासन सुनी सब आए। शिव जब कहे कि चलो पीछे आ जाओ, उसने कहा तो सब लोग पीछे आ गए। प्रभु पद जलज सीज तीन नाए, और नाच नाच सब लोग दूर से ही शिव जी को प्रणाम किए। ठीक हो ना? ठीक है, आप बैठो, हम लोग नाच रहे हैं। नाना बाहन नाना बेशा बीर से शिव समाज निज देखा को मुखहीन। शिव जी ने देखा कि अब कैसा नाच हो रहा है तो को मुखहीन को कुछ लोग तो सिर था ही नहीं, धड़ को लेकर ही नाच रहे थे। को मुखहीन किसी का सिर ही नहीं था और बिना सिर के नाच रहे थे, और विपुल मुख और किसी के जिसके सिर थे उसके 10-15 सिर थे और 10-15 सिर को लेकर नाच रहे थे। बिनु पद कर किसी के हाथ और पांव ही नहीं थे, केवल धड़ से नाच रहे थे। और किसी का धड़ नहीं था, केवल हाथ और पांव ही नाच रहे थे। आपने यदि इसको समझना हो तो कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी प्रभु देवा की, उसमें आपके ही गांव का था वो। ये फिल्म वालों ने भी ये देखकर ही बनाया होगा। ये जब नाचता था तो ये हाथ का ये कुछ नहीं दिखता, उसका हाथ और पांव ही दिखते थे। ये सचमुच के बिना धड़ के केवल हाथ और पांव ही नाच रहे थे। विपुल नयन कुछ लोग ऐसे थे शिव जी ने देखा कि जिसके 15-20 आंखें हैं, और को नयन विहीना, और कुछ लोग तो बिना आंख के ही नाच रहे थे। किसी के कोने में जाकर नाच रहे थे, कोई किसी पेड़ के नीचे जाकर अकेला अकेला नाच रहा था। बेचारे आंख नहीं थे, क्या करे। कोई नाचते नाचते किसी के घर पर चला जाता था। बहुत उत्पात मचाया। रिष्ट पुष्ट को अत तन खीना, और कुछ लोग अपनी मुंडी को हाथ में उछालते उछालते जैसे कोई बड़ा पराक्रम कर रहे हैं। इस प्रकार से शिव जी की बारात जा रही थी। कहते हैं भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सो नीति तन भरे खरस्वान। और ये जितने भी शिव जी के गण थे ये सब लोग अपने अपने वाहनों को लेकर आए थे। कोई मोटर बाइक, कोई साइकिल ऐसा नहीं था। कुछ लोगों का वाहन कुत्ता था, साथ में कुत्ते को भी रखे थे। कुछ लोग सुअर को साथ में रखे थे, कुछ लोग सियार को साथ में लेकर रखे थे, वे भी नाच रहे थे। तो इस प्रकार से बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरतन नहीं बने। इस प्रकार ये भूत पिशाच ये सब लोग नाच रहे थे। गोस्वामी जी कहते अब मेरी कलम चल नहीं रही है। आप कल्पना कर लीजिए किस प्रकार से ये बारात जा रही होगी। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र प्रीति। इस प्रकार से सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और शिव जी की बारात जा रही है। जस दुल्हु तसी बनी बाराता कौतुक विविध हो ही मग मग जाता यहाँ हिमाचल रहु बितीना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इस प्रकार से शिव जी की बारात थी परंतु हिमालय और पार्वती की माता को स्वप्न में भी ऐसा नहीं था कि ऐसी बारात और ऐसे दूल्हे राजा होंगे। फोटो भी नहीं दिखाया था नारद मुनि ने कि ऐसे पति है तुम्हारे, ये तो बाद में पता चलेगा। तो इस प्रकार से ये बारात जा रही थी हिमालय, और मैना ने बहुत ही सुंदर आयोजन करके रहा था, बहुत सुंदर मंडप था, सभी पर्वतों को बुलाया था, सभी लोगों को आमंत्रण दिया था, सब लोग आए थे। और धीरे धीरे करके ये बारात जो थी नगर निकट बारात सुनी आई, ये बारात धीरे धीरे हिमालय और मैना के नगर के निकट आ गई। पूर्व खबर हो शोभा अधिक आई, और सभी बारात वालों ने देखा कि बहुत सुंदर शोभा है, पूरे गांव को सजा कर रखा है पार्वती का विवाह करने के लिए। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन साथ दर अगवाना। तो ऐसा होता है, ऐसी प्रथा है कि जब दूल्हे राजा घर पर आते हैं तो सबसे पहले तिलक करने के लिए जाते हैं। तो ये सब पार्वती के माता पिता तिलक करने के लिए अपना वाहन लेकर शिव जी के बारात की ओर आए। तो पार्वती और उनके पिता नहीं आए, उनके जितने भी उनके रिश्तेदार थे और गांव के जो बालक इत्यादि थे, ये सब लोग आए। ये हर्षे सुरसेन निहारी, क्योंकि इस बारात में आगे भगवान विष्णु और सभी देवता चल रहे थे, तो गांव के लोगों को लगा कि अब देखिए बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। मन में बहुत हर्ष रहे थे, अब देखिए बाराती इतना गहना और इतना सुंदर मेकअप करके आए हैं, हमारे दूल्हे राजा तो कितने सुंदर हो गए, भगवान विष्णु मन में सोच रहे थे। दूल्हे राजा को आगे आने दो, इसमें से कितने जिंदा रहेंगे, यही बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है मुझे। दूल्हे राजा को देखकर कितने जीवित रहेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये लोग आए, देखे देवताओं को, देवताओं का सब पूरा झुंड पसार हो गया। शिव समाज जब देखत लागे, देवताओं जब आगे निकल गए और गांव के लोगों ने शिव के समाज को देखा जो पीछे नाच रहे थे, बिडरी चले बाहन सब भागे। शिव जी के गणों को देखकर, शिव जी के गणों के नाच को देखकर ही वहां पर भागने, वहां से भागे। लेकिन धरी धीरज तह रहे सयाने, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे, जो बुद्धिमान, जो धीर गंभीर थे, वे वहां पर रुके। बालक सबले जीव पराने, लेकिन जो बालक थे वे तो अपनी जान अपनी चड्डी पकड़ कर वहां से भागे। क्या अब थोड़ी भी देर रुकना नहीं है, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे। अब देखो कोई धड़ केवल सिर नहीं है, केवल धड़ नाच रहा है, किसी का केवल हाथ और पांव नाच रहा है, कोई अपनी मुंडी उछाल कर नाच रहा है। कौन सा भी बालक डर जाएगा। सभी बालक वहां से भागे और हाँफते हाँफते अपने घर पर आए। माता पिता ने पूछा, क्या हुआ, तुम गए थे अपने दूल्हे राजा को देखने के लिए, देखकर आए। कहीं कहा कहीं जाई न बाता, कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्या कहे। जम जम कर धार की दो अति बारा, ये बालक सोच रहे थे ये शिव जी की बारात है या यमराज के दूत आए हैं। हमारी पार्वती को लेने के लिए शिव जी आए हैं या यमराज के दूत आए हैं। बरु गोरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बालकों ने कहा कि दूल्हे राजा के सिर के ऊपर सांप है, ये है, पूरा वर्णन किया बालकों ने। तो इस प्रकार से बालकों ने वर्णन किया और धीरे धीरे करके ये सारी बारात आ गई। बारात आई, देवतागण पीछे हुए, शिव जी को नीचे उतारा गया। और पार्वती की जो माता थी मैना ने बहुत ही सुंदर आरती की थाली बनाकर रखी थी कि जब हमारे दूल्हे राजा आएंगे तो उसकी आरती उतारेंगे। और देवताओं के बीच में जब शिव जी मैना तैयार थी आरती उतारने के लिए, देवताओं के बीच में जब शिव जी को आगे किया गया और कहा कि यही दूल्हा है, तो मैना आरती उतारने की बात तो दूर रही, शिव जी को देखकर वहीं धड़ाम करके बेहोश होकर गिर गई। सब लोग हवा देने लगे, पंखा देने लगे, पानी छिड़कने लगे, और दो तीन जन उसे उठाकर अंदर की रूम में घर पर लेकर चले गए। मैना को होश आया और कहा, नारद को बुलाओ। ये नारद मेरा इतना सुंदर जीवन जी रहे थे, मेरे जीवन में आग लगाने के लिए ऐसे दूल्हे के साथ रिश्ता फिट करवा दिया। नारद जी को कहा कि और कोई नहीं मिला विवाह कराने के लिए। इस प्रकार से बहुत कौतुक हुआ शिव जी के विवाह में। परंतु वह मैना क्या जाने कि यह शिव जी क्या तत्व है, कौन है। आप लोग को लगा होगा कि प्रभु जी इस प्रकार से शिव जी की विवाह की कथा क्यों सुनाए। पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रसंग के अंत में कि यदि कोई शिव जी के विवाह की कथा सुनता है तो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो समय बीत रहा है, सारे दस तो विवाह में ही बच गए, अब तो गृहस्थ जीवन भी आगे आने वाला है। तो समय की अवधि के कारण शिव जी का विवाह वहां पर हुआ, विवाह हुआ, आगे चलकर फिर गड़बड़ नहीं हुई। विवाह में थोड़ा बहुत कोलाहल हुआ, रोना धोना हुआ, लेकिन फिर विवाह हो गया, शिव जी का विवाह हुआ। शिव जी अपनी पत्नी को लेकर, पार्वती को लेकर अपने घर पर वापस आए हैं। शिव जी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सुंदर जीवन जी रहे हैं और नित्य निरंतर भगवान श्री रामचंद्र के नाम का जप करते हैं शिव जी। गृहस्थ जीवन बहुत ही सुंदर बीत रहा है और शिव जी प्रतिदिन अपनी पत्नी पार्वती को भागवत कथा सुनाते हैं। तो भागवत कथा सुनाते सुनाते एक दिन भगवान के भक्तों की महिमा आ गई। भागवत का पंचम स्कंद आया होगा, रहु गणेत तपसान याति विना पहत महत्पाद रजो अभिषेक। जब तक भगवान के भक्तों का की सेवा नहीं की जाती है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। और पार्वती जी ने कहा कि भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। पार्वती ने अपने पति के उपदेश को सुनकर दूसरे दिन सोचा कि अब मैं भक्त की सेवा करूंगी। और पार्वती जी ने फोन करके अगस्त जी को बुलाया, आप हमारे घर पर आओ, हम आपकी सेवा करने चाहते हैं। अगस्त जी को बुला लिया और फिर शिव जी अपने पति को कहा कि प्रभु आपने कहा था ना कल भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तो मैंने अगस्त जी को बुलाया है अपने घर पर भोजन करने के लिए, तो प्रभु मैंने ठीक किया। शिव जी ने कहा और कोई नहीं मिला आपको? अगस्त जी के अलावा और कोई नहीं मिला आपको यहां पर भोजन कराने के लिए? हे देवी, अगस्त जी जब पानी पीने की इच्छा होती है तो वो पानी पता है कितना पीते हैं? अगस्त जी पानी पीते तो पूरे समुद्र को पी जाते हैं। जब पानी पीने में पूरे समुद्र को पी जाते हैं तो वो कितना खाएंगे? और उतना है तुम्हारे घर पर? और संसार के लोग यदि तुमने उसको भूखा भेज दिया, भूखे भेज दिया, तो संसार के लोग यही कहेंगे कि जीवन में पहली बार शिव जी के घर पर गया था और वहां से भी भूखा आना पड़ा, देवी तुमने बहुत गड़बड़ कर दी। और किसी को भी बुला लिया होता लेकिन अगस्त जी को क्यों बुलाया? ये अगस्त जी समुद्र को पिए थे। इसका नाम और एक नाम कुंभज ऋषि है, इनका जन्म कुंभ से हुआ था परंतु समुद्र को पी गए थे। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप क्या कह रहे हो? आप कहते हो कि मैं अगस्त जी को खिला नहीं पाऊंगी? अरे अगस्त जी खाने में इतने माहिर है तो मैं कोई कम थोड़ी ना हूं, मैं भी अन्नपूर्णा हूं। पार्वती जी का ही एक रूप अन्नपूर्णा देवी है। अरे मैं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालन पोषण अन्न के द्वारा करती हूँ, तो क्या एक ऋषि को नहीं खिला सकती हूँ? आप डरो मत, आप टेंशन मत लो। शिव जी ने कहा देखो यदि कुछ हो गया तो फिर मेरे पास मत आना। पार्वती ने कहा ठीक है मैं खिला लूंगी। तो दूसरे दिन पार्वती जी ने बहुत सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन बनाकर रखे और पार्वती जी अपनी सभी सहेली को बुला ली। एक सह भागवत में वर्णन है सहस्त्र, 1000 हेल्प करने वाली, भोजन बनाने के लिए हेल्प करने वाली पार्वती जी ने अपनी सखियों को बुलाया और सखियों को बुलाया। दूसरे दिन कुंभज ऋषि आए, अगस्त जी आए। अगस्त जी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे बाप, एक तो इतना खाते हैं और उसे भूख लगे तो कितना खाएंगे। एक चौकी लगाई खाने के लिए और चौकी के ऊपर कुंभज ऋषि को बिठाया, बिठाकर बहुत बड़ी थाली परोसी, थाली थाली में भोजन, कुंभज जी महाप्रसादी गोविंदे करके भोजन खाना प्रारंभ किए। तो 2-3 जन सर्विस कर रहे थे, ला रहे थे, लेकिन कुंभज ऋषि की स्पीड इतनी थी 2-3 जन से काम नहीं हुआ। 10-15 जन को लगाया गया फिर भी कुंभज ऋषि तो एक ही हाथ से पूरा। भागवत में वर्णन है अंत में 1000 सर्विस करने वाली सखियों को लगाया, 1000 सखियां स्लो हो जाती थी परंतु कुंभज ऋषि का तांता नहीं टूटता था, वे तो खाने लगे और उनकी भूख इतनी कड़ी थी, इतनी तेजी थी भूख की कि उस तेज के कारण वो सर्विस करने वाली स्त्री यदि पुरुष ने आती थी तो तेज के कारण कुंभज ऋषि उसे खींच लेते थे। ये पार्वती जी की सखियां डरने लगी कि अब तो हमें खा जाएंगे, इतनी तेजी से यह भोजन कराने लगी। धीरे धीरे पार्वती ने देखा कि भोजन सब खाली होने जा रहा है, भोजन खाली होने जा रहा है और पतिदेव कल कह रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे थे, यदि ये भोजन करते करते भोजन खाली हो गया और मैं इसे भोजन पूर्ण नहीं करा सकी तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। पार्वती जी सोची अब क्या करे, अपने पति शिव जी के पास गई, पतिदेव आप जो कल कह रहे थे ऐसा ही हुआ प्रभु, अब कुछ करो। शिव जी ने कहा देखो मैंने कल ही समझाया था आपको, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको जो करना है करो। पार्वती जी ने मन ही मन में सोचा अब क्या करे क्या करे, बेसहारों के सहारा एक ही है भगवान श्री कृष्ण। पार्वती जी ने दोनों हाथ ऊपर कहा कि प्रभु करके कहा कि हे कृष्ण अब आप ही मेरी इस विपत्ति से रक्षा करें। पार्वती को इतना कहना था, भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं, भगवान तो राह देखते हैं कब ये भक्त मेरा नाम ले और उसके पास में चला जाऊं। पार्वती जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को याद किया तुरंत यहां पर घर पर बेल बजा टिंग टोंग, और भगवान श्री कृष्ण एक ब्रह्मचारी एक बालक का रूप लेकर आए, ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर आए और ब्रह्मचारी के रूप में थे। पार्वती जी ने दरवाजा खोला तो बालक ने कहा कि मैया मुझे बहुत भूख लगी है। पार्वती जी ने कहा एक ऋषि से परेशान हूं और तुम दूसरे आ गए, एक को पूर्ण खाली होने जा रहा है, हमारा स्टॉक जितना बना कर रखा था ये सब खाली होने जा रहा है और तुम आ गए। मैया मेरा इतना छोटा सा पेट है, मैं कितना खाऊंगा, मुझे थोड़ा खिला दीजिए। पार्वती जी ने कहा ठीक है चलो, नाम बिगड़ रहा है तो दोनों साथ में बिगड़ेगा नाम और क्या है। तो पार्वती जी ने कुंभज ऋषि की जो चौकी थी उसके बाजू में एक चौकी लगाई और कहा कि आप इस पर बैठ जाओ। बालक ने कहा मैं दूसरी चौकी पर नहीं बैठूंगा, मैं कुंभज ऋषि के साथ ही बैठूंगा। कुंभज ऋषि तो खा रहे थे, अपना बंद नहीं कर रहे थे, खाते खाते बालक क्या डिस्टर्ब करने आ गए। तो बालक ने जीत पकड़ा कि मैं तो कुंभज ऋषि के बाजू में ही बैठूंगा। अंत में पार्वती जी ने कहा ठीक है उसके बाजू में बैठ जाओ और उसके बाजू में एक छोटी सी थाली दी और थाली में परसो। दो तीन मिनटों में भगवान ने थोड़ा बहुत खाकर अपना हाथ धोकर कहा कि माता मैंने भोजन कर लिया। पार्वती जी ने कहा भोजन हो गया, तो उस बाल ब्रह्मचारी भगवान ने इतना ही कहा हम एक कुंभज की तरह पेटू थोड़ी ना है कि घंटों से खाते रहेंगे, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। कुंभज ऋषि को लगा कि ये बालक अभी दो तीन मिनट पहले आया और खाकर संपूर्ण कर दिया और कुंभज ऋषि को शर्म आने लगी, शर्मा गए बेचारे। और जब कुंभज ऋषि ने देखा कि ये बालक दोनों हाथ एक ही चौकी में धो दिया तो कुंभज ऋषि खाना बंद किए, क्योंकि एक चौकी पर यदि हाथ धोया जाता है तो वह चौकी अपवित्र हो जाती है। इसलिए आप देखे होंगे भक्त जब प्रसाद लेकर उठते हैं तो बाजू वाले भक्त यदि कोई बैठे तो साथ में खड़े होते हैं, राह देखते हैं उनकी, ये हमारी पुरानी प्रथा है। तो ये तो हाथ धोकर खड़े हो गए, अब कुंभज ऋषि भी देखा कि अपवित्र स्थान हो गया है, उसे भी खड़ा होना पड़ा और अंत में वहां पर पार्वती जी की लाज रह गई और कुंभज ऋषि वहां पर पानी पीने के लिए भी नहीं खड़े रहे क्योंकि चौकी अपवित्र हो गई थी। और कुंभज ऋषि ने पार्वती का ध्यान नहीं था, कहा कि अरे तुमने पूरा मजा बिगाड़ दिया, कम से कम पानी तो पीने देना था। तब उस बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि आप धैर्य धारण करो, अगले आने वाले द्वापर युग में जब इंद्र ब्रज के ऊपर कोप करेगा और सांबर तक मेघ को आदेश देगा, जब वो पानी बरसाएगा तब आप पानी पीने आ जाना। और ये भागवत की घटना है, जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया और इंद्र ने पानी बरसाया तो एक प्रश्न होता है कि इंद्र इतनी वर्षा कर रहे थे भगवान यद्यपि गोवर्धन धारण करके खड़े थे और नीचे सब ग्वाल बाल सखा खड़े थे, परंतु पानी सब कहां जा रहा था? गोवर्धन के ऊपर से पानी गिरकर तो बाजू में ही जाएगा, तो ये पानी कहां गया? भगवान ने कहा था कि कुंभज ऋषि जब मैं गोवर्धन उठाऊंगा तब पानी पीने के लिए आ जाना है। तो भोजन यहां पर किया और पानी भगवान ने कुंभज ऋषि ने वृंदावन में पिया। इस प्रकार से ये शास्त्र की एक लिंक है। तो इस प्रकार से शिव जी की घर गृहस्थी चलती है, अपनी भारिया के साथ रहते और नित्य निरंतर भगवान श्री राम का नाम लेते रहते। शिव जी के दो ही काम है, एक तो भागवत करना और भगवान का नाम जपना, हरे कृष्णा शिव जी नित्य निरंतर भगवान श्री राम का नाम जपते रहते हैं। और वास्तव में जीवन में यही करना चाहिए, जीवन में और सब कुछ साथ में नहीं आने वाला है, जीवन में साथ में आएगा तो भगवान का नाम साथ में आएगा। ये जितनी भी धन संपत्ति ये जो भी है हम यहाँ पर ही छोड़कर जाएंगे, इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक भक्त बहुत ही सुंदर गाते हैं, चाहे राम कहो घनश्याम कहो, बोलो सीता राम रे बीत रही है उमरिया, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बोलो सीता राम रे गई, चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बोलो सीता राम रे बीत रही है उमरिया, चाहे घन श्याम कहो बोलो सीता, कदम कदम पर पाप यने को तूने नित्य कमायो, कदम 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 पर पाप यने को तूने नित्य कमायो, कभी न सत्संगो में आकर तूने हरि गुण गायो, कभी न हो प्यारे तूने हरि गुण गायो, हो चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बोलो सीता राम रे बीत रही है उमरिया, चाहे बोलो सीता राम रे, हाथी घोड़ा मालख जाना कोई न संग में आवेगा, हाथी घोड़ा चेत, अरे माटी के पुतले नश्वर है तेरी काया, चेत अरे चार दिनों की जिंदगानी में तू काहे भर माया, चार दिनों की याओ प्यारे तू काहे भर माया, ओ प्यारे चाहे राम कहो घनश्याम कहो, बोलो सीता राम रे बीत रही है उमरिया, चाहे
चाहे राम कहो घन श्याम कहो बोलो सीता राम रे बीतर ही है उमरिया चाहे बोलो सीता अभी तर ही है उमरिया बीतर ही है उमरिया हे आँखों टू के मुखों टू करू आँखों टू के मुखों टू करू जीवन या तू खोटाणू अरे अण हम जन नाय अंधारामा क्या थाय हवे अजवाड़ू प्रभु ने पड़तो मेली प्रभु नी पत्नी नू जो ने हरण करे एवा आज घरो घर रावण जोई प्रभु ना नयन जरे रे जीजी जोई प्रभु ना नयन जरे रे जीजी जोई प्रभु ना
चाहे राम कहो घनश्याम कहो बोलो सीता राम बीत रही है उमरिया ये समय ये उम्र बीत रही है इसलिए राम और कृष्ण का नाम ले लेना चाहिए। तो कुछ लोगों की इच्छा थी कि भगवान शिव के जो प्रभु है राम भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुना जाए तो आइए भगवान श्री रामचंद्र की एक लीला श्रवण करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में जन्म लिए हैं अवधपुरी में राजा दशरथ के पुत्र है। जन्म लेते ही बहुत कम उम्र में मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर चले गए जनकपुरी में जाकर उनका विवाह कराए। विवाह करने के बाद सीता जी के साथ कुछ साल तक रहे परंतु कैकेयी ने रहने नहीं दिया। 14 साल के लिए वन में भेज दिया। भगवान श्री रामचंद्र जब वन में गए तो पूरी अवधपुरी रो रही थी। रामचंद्र के पिता दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कहा कि राम को आप लेकर जाओ और कुछ देर तक घुमाकर वापस लेकर आओ। राजा दशरथ अपने वचन पर अटल थे क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार वचन दे चुके थे कैकेयी को। तो राजा दशरथ के मन में हो रहा था कि राम एक बार कह दे मुझे नहीं जाना है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन राम ने नहीं कहा। सुमंत्र जी राम को छोड़ने के लिए गए हैं। सुमंत्र जी राम को श्रृंगवेरपुर लेकर गए और श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री रामचंद्र ने एक रात के लिए निवास किया। सुबह होते ही भगवान ने सुमंत्र जी को शास्त्र के बहुत बड़े बड़े उपदेश देकर अवधपुरी में वापस भेज दिया। भगवान श्री राम पत्नी सीता और लखनलाल तीनों साथ में 14 साल के लिए वन में जाने के लिए वहां से आगे बढ़ रहे हैं। जब श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े तो भगवान श्री रामचंद्र को चलते चलते बीच में गंगा नदी पड़ रही थी। तो गंगा नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। तो भगवान ने देखा कि इस गंगा को पार करना है और यहां पर यदि कोई नाविक या नाव हो तो हम नाव में बैठकर पार हो जाए। तो एक नाविक को भगवान ने देखा और नाव लेकर उस गंगा के उस पार बैठा था। तो भगवान ने दूर से कहा कि यहां पर आओ हमें उस पार जाना है। तो नाविक ने दूर से ही कह दिया कि प्रभु हम आपके पास नहीं आएंगे, इशारे में कह दिया। भगवान ने ये सब इशारे में बात हो रही थी। भगवान ने कहा क्यों नहीं आओगे? नाविक ने दूर से कहा बहुत बड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ है इसलिए नहीं आएंगे। समझे कहते हैं माँ की नावन केवट आना कहीं तुम्हारा मरम में जाना अरे बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी गड़बड़ कर दी मैंने, किसी का खून करके तो नहीं आया हूं मैं, क्या आपको पुलिस पकड़ लेगी, क्या मर्म, क्या नहीं, क्या मेरे बारे में जानते हो, क्या गड़बड़ है भगवान ने कहा मुझमें। केवट ने दूर से कहा आप में कुछ गड़बड़ नहीं है, आपके चरणों में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, वो चरणों के नीचे जो रज लगी हुई है वो धूल में गड़बड़ है। भगवान ने दूर से कहा क्या गड़बड़ है रज में भाई। केवट ने कहा मानुष करनी मूरी कछु हई, आपके चरणों में जो रज है ये पत्थर को मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है, और मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काट कठिनाई। मैंने सुना है कि आप विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर मिला, उस पत्थर के ऊपर आपने चरण रखा, चरण क्या रखा, चरण की रज उस पत्थर से स्पर्श हो गई तो वो पत्थर नारी बन गई, तो आपकी चरण की रज पत्थर से स्पर्श हुई और नारी बन गई, तो प्रभु ये मेरी जो नौका है तो काठ की बनी हुई है, निश्चित रूप से ये तो नारी बन ही जाएगी, और क्या बताऊं एक पत्नी को लेकर इतना मुसीबत में फंसा हुआ हूं, दो दो पत्नी हो जाएगी कहां से रखूंगा। तरनी मुनि धरनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई। पत्थर यदि नारी बन जाए तो मेरी ये नौका नारी बन जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो प्रभु मैं अपनी नाव को नारी बनाना नहीं चाहता हूं, और यदि ये नारी बन भी गई तो मैं मेरे परिवार का पालन पोषण इस नाव से करता हूं, यही प्रतिपाल हूं सब परिवार, मेरे पूरे परिवार का पालन इस नाव से ही करता हूं, नहीं जानू कछू और कबाऊ, और दूसरा धंधा भी मैं नहीं जानता हूं, ये नाव को चलाने के अलावा दूसरा बिजनेस भी मैं नहीं जानता हूं, तो आप मैं आपको नहीं बिठा सकता हूं। हां यदि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं मोही पद पदम पखार न कहूं, यदि आप इस पार आना चाहते हो तो आपका चरण धोने दो, चरण में यदि आपका धो लूंगा तो फिर मैं आपको पहुंचा सकता हूं। अरे केवट की इच्छा थी कि मैं भगवान के चरण का अपने हाथों से धोऊं, और इसके लिए केवट इस प्रकार से बहाना कर रहा था। भगवान ने कहा लक्ष्मण इस प्रकार से जब केवट कह रहा था तो लक्ष्मण जी तो तीर निकाल ही रहे थे, अब मार दूंगा मैं, बहुत क्रोधित हो रहे थे, ये तो अनंत शेष के अवतार है, बहुत क्रोधित हो रहे थे, लेकिन भगवान बड़े भाई साथ में थे इसलिए कुछ। केवट ने कहा दशरथ जी की कसम खाकर कहता हूं कि लक्ष्मण मुझे मार भी देना, जब तक आप चरण नहीं धोने दोगे लक्ष्मण मार देंगे, मजदूर मंजूर है मर जाना, परंतु चरण धोए बिना आपको उस पार पहुंचाना ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, चरण तो धोने ही देने पड़ेंगे। प्रभु सुनी केवट के नैन बेन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट के इस प्रकार से वचन को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जोई तव नाव न जाई, भगवान ने कहा कि कृपा सिंधु भगवान ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र ने कहा अरे भाई आपको जो करना है करो, चरण धोना है तो धो लो, लेकिन मुझे उस पार पहुंचा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रभु का एक नाम भी यदि कोई ले ले, जिस प्रभु का एक बार नाम भी यदि कोई ले ले तो यह भवसागर को पार हो सकता है, वह प्रभु एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट से भीख मांग रहे हैं, प्रभु की लीला भी अद्भुत है। तो केवट भगवान ने कहा कि यदि धोना पांव चरण धोना चाहते तो धो लो, तो जब भगवान ने कहा केवट को कि जाओ धो लो तो केवट तुरंत घर पर गया, केवट राम रजाई सुपावा पानी कठोता भरी ले आवा। केवट अपने घर जाकर एक बहुत बड़ी कठोती लेकर आया, लोटा लेकर आया, भगवान को कहा इसमें चरण रखो, और भगवान के चरण धोने लगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, केवट के हृदय में बहुत आनंद हो रहा है कि आज भगवान के चरण मुझे धोने मिल रहे हैं, क्यों नहीं होंगे, उस भगवान की परंपरा में आने वाले, भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद, नारद ने व्यास, व्यास ने मध्वाचार्य मध्वा ने अक्षोभ्य जय तीर्थ आते 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 कई लोग आ जाते हैं उसकी परंपरा में, जगन्नाथ बाबा जी महाराज और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद महाराज और प्रभुपाद जी के शिष्य यदि कोई हमारे घर पर आ जाते हैं और उसके चरण धोने मिलते हैं तब हम आनंदित हो जाते हैं। तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ के चरण धोने मिले तो कितना आनंद होगा, कल्पना कीजिए। तो इस प्रकार से केवट भगवान के चरण को धो रहा है, परंतु देवताओं स्वर्ग में रहने वाले देवता इस दृश्य को देखकर रह गए, अवाक हो गए। और सभी देवता अपने मन में यही सोच रहे थे, यही सम पुण्य पुंज को नाही, आज की तारीख में इस संसार में केवट जैसा पुण्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। अरे हम क्या पुण्य करके स्वर्ग में पहुंचे हैं, वास्तविक पुण्य तो यह केवट ने किया है, जो भगवान को अनंत अनंत जन्मों से हजारों हजारों सालों से योगी लोग ध्यान करते रहते हैं, मुनि लोग जतन करके रहते हैं, परंतु उस भगवान के चरणों का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, उस चरण को केवट आज अपने हाथ से धो रहा है। और केवल धोया ही नहीं, पद पखारी जलु पान करी, पद पखार के भगवान के चरण को धोकर केवट ने उसे पिया। भगवान हंस रहे थे, आप सहित परिवार अकेले नहीं, केवट ने पग धोया, चरण जल पिया, घर पर गया, भगवान रुको थोड़ी देर, ठीक से साफ नहीं हुआ है, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आया, कहा अब तुम धो। पत्नी ने धोया, पत्नी ने पिया, बच्चों का चलो आप भी लगो साथ में, बच्चों ने धोया, बच्चों ने भी पिया। गोस्वामी जी कहते हैं केवट ने भगवान को उस नदी के पार कराने से पहले अपने पत्नी और बच्चों को इस भवसागर से पार करा दिया। भगवान को नदी पार कराने से पहले अपने स्वयं पत्नी और बच्चों को भवसागर के पार करा दिया। देवता लोग मन में यही सोच रहे हैं कि हम इतना इतना पढ़े हैं, लिखे हैं, इतना ज्ञान प्राप्त किए हैं, लेकिन वास्तव में ये सब बेकार है, वास्तव में यह गांव का अनपढ़ गवार केवट भगवान को प्राप्त कर लिया आज, वास्तव में यह विद्या नहीं है जिस विद्या को लेकर भगवान न मिले, और वह धन धन नहीं है जो धन के रहते भगवान नहीं मिलते। बहुत करोड़ोंपति अरबपति होते हैं परंतु भजन नहीं करते तो वह जीवन बेकार है, परंतु एक झोपड़ी में रहने वाला भी यदि भगवान का भजन करता है तो भगवान उसे दर्शन देते हैं। क्या उस वक्त बड़े बड़े लोग नहीं थे? भगवान बड़े बड़े लोगों के महलों में नहीं गए, केवट के पास आए, शबरी के घर पर चलकर भगवान ढूंढते ढूंढते गए। सुदामा जी को पूरी द्वारका नगरी ही दे दी। भगवान दीन दयाल है, दीनों के ऊपर कृपा करते हैं, तो वास्तव में केवट के ऊपर भगवान ने कृपा की, और जब ठीक से चरण धो लिया तो केवट ने कहा कि प्रभु अब आप बैठ सकते हो। केवट ने भगवान को नाव में बिठाया, नाव में बिठाकर केवट सीधा सीधा उस पार नहीं लेकर गया, केवट भगवान को उस नदी में ही चक्कर घुमाने लगा। तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो रहे थे, भगवान के यदि इशारा आज्ञा भी नहीं, इशारा कर दे तो इसे मैं समझा दो, लेकिन भगवान ने कहा केवट क्यों इस प्रकार खामखा बीच में चक्कर कटा रहे हो? केवट ने इतना ही कहा, प्रभु बस इतने में थक गए, हम 84 लाख के चक्कर काट रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं थके, आप एक चक्कर में थक गए। प्रभु तात्पर्य यही है कि आप एक चक्कर में थक गए, हम यह भवबंधन के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, कृपया करके आप भी हमें पार करवा दीजिए। प्रभु मेरा काम है नदी से उस पार करवाना और आपका काम है भवसागर का पार करवाना, मैंने मेरा काम कर लिया, अब आप अपना काम कीजिए। इस प्रकार से केवट नदी के उस पार करवाया, भगवान श्री रामचंद्र उस नाव से उतरे। भगवान को मन में हुआ कि केवट को कुछ उतराए, कुछ भाड़ा देना चाहिए, सीता जी इस बात भगवान के मनोभाव को समझ गई और अपने हाथ से अंगूठी निकालकर भगवान को दी। भगवान ने जब वह अंगूठी केवट को देना चाहा तो केवट ने कहा, प्रभु ये आप क्या दे रहे हो? प्रभु आप मुझे ये अंगूठी दे रहे हो? प्रभु मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया। आपका दर्शन हो गया, आपका चरण धोया और आपके चरणों तक पान किया, अब मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे क्या नहीं मिला?
नाथ आज में काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन बीती बनी भली भूरी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शिर धर लेवा।
केवट ने कहा, प्रभु मुझे क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं मिला? आपका दर्शन हुआ, आपके चरण चरणों तक का पान हुआ। हे नाथ, ये अनंत अनंत जन्मों से जो मैं काम करता आया हूँ, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो मैं मजूरी करता आया हूँ, करोड़ों जन्मों की मजूरी का फल मुझे आज मिल गया नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, हे नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको देना ही है तो आप अपनी कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति करता रहा। न धनम न जन्म न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहे चुकित्वाई। यदि आपको देना है तो आपके चरणों में भक्ति दीजिए। केवट ने इस प्रकार से भगवान के चरणों में भक्ति मांगी, फिर भी भगवान ने कहा कि आप ले लो। केवट ने कहा, प्रभु यदि आपको देना ही है तो फिर ती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। प्रभु यदि आपको देना ही है तो 14 साल के बाद जब आप वापस लौटोगे तो फिर से मेरी नाव में बैठकर जाना, यही मैं आपसे मांग रहा हूँ। भगवान के जो भक्त होते हैं वे बहुत चतुर होते हैं। केवट ने दूसरी बार का भी एग्रीमेंट करवा लिया कि वापस आओगे तो मेरी नाव में बैठना है, दूसरी बार भी दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से केवट भगवान और भगवान के भक्त की लीला है, ऐसी मधुर मधुर लीला भगवान की है। और भगवान की इस प्रकार से कथा सुनना यही जीवन का परम लाभ है, यही हमारी सच्ची कमाई है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए। आपके ऊपर असीम कृपा है प्रभुपाद जी की और प्रभुपाद जी की संस्था में आने वाले भक्तों की। आप सब पर हमारे जिग्नेश प्रभु की असीम कृपा है। बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत सुंदर भक्ति करते हैं। यदि आप इनके मुख से भगवान की कथा सुनते रहोगे, आप सुनते ही हो और सुनते रहोगे, तो निश्चित रूप से जैसे केवट ने भगवान का दर्शन किया है वैसे आप भी कर पाओगे। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि जिग्नेश प्रभु और अंजू प्रभु के साथ रहकर, उनके अंडर में रहकर, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए इस प्रकार से भगवान की कथा सुनिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। और राधा गिरधारी मंदिर तो पास में ही है, जब भी समय मिले मंदिर में आइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, कथा सुनिए और प्रसाद खाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और 11 बज गया फिर भी एक आसन के ऊपर बैठकर आप सुने हैं धैर्य के साथ। आप सबका बहुत आभार। और मैं विशेष आभारी हूँ जिग्नेश प्रभु और अंजू प्रभु का, जो बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पर किया। अरे करोड़ों पति गाड़ी और बंगलों में रहने वाले क्या कथा कीर्तन करते हैं, वास्तव में अंजू प्रभु का भाव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आयोजन। बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति हम देखते हैं, जिसके पास बहुत धन है वे लोग ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रभु जी ने बहुत सुंदर कार्य किया। ये जो धनी लोग हैं ये समुद्र के समान है, समुद्र में यद्यपि बहुत पानी है लेकिन एक ग्लास भी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, खारा है। लेकिन उसी समुद्र का जो जल है, कुछ जल बादल को मिलता है और बादल वो पानी बरसाता है। तो उसी धनी लोगों से अंजू प्रभु जैसे लोगों को थोड़ा थोड़ा धन मिलता है, परंतु धन्य है अंजू प्रभु जैसे जो मिला हुआ धन भी इस प्रकार से कार्यक्रम करके दान करते हैं, बहाते हैं। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि आप भी अंजू प्रभु की तरह, जिग्नेश प्रभु की तरह भक्त बनिए, और इसमें ही आनंद है, वास्तविक आनंद इसमें है, और भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्ण।